कई सुंदर साथ चर्चा करेंगे। लो जी, आप भी नहीं, आपने भी तो भगवान कह दिया था नहीं चर्चा में, अभी भगवान भी है, क्योंकि अभी नाते का कुछ पता नहीं कि ये मेरे क्या लोग थे। यही सोचा दिल में कि जिस परमात्मा को, जिस भक्तार को, जिस भगवान को मैं ढूंढने के लिए निकला था, निश्चय ये वही है, उसके बिना और कोई भी मेरा मददगार ऐसे जंगल में हो नहीं सकता। बड़े पछताए, अपने आप को फटकारा, लेकिन दिल में ये निश्चय हो गया कि अगर इतने संकट के समय में वो मेरे साथ है तो मेरे पर लाख मुसीबत भी आ जाएगी तो वो मेरा कभी भी हाथ छोड़ सकते नहीं, सदा वो मेरे सिर पर खड़े रहेंगे, मैं उनके चरणों से जुदा नहीं हूंगा। बस ये निश्चय करके अपनी गठरी ली और आगे बढ़े। जब थोड़ा सा आगे गए तो वहां पहरेदार खड़े हुए थे, बरात वालों के सिपाहियों को तुरंत जो है वहां के वजीर ने चारों तरफ सिपाहियों को खड़ा पहरे पर कर दिया कि देखो भाई होश के साथ कुछ और डाकू ना आ जाए। तो सिपाही पहरे पर खड़ा हुआ था, देवचंद जी को आते देख कर तो कहा, अरे भाई कौन है तू? कहने लगे, भाई घबराओ नहीं, उमरकोट के गांव के रहने वाले तुम हो, मैं भी वही हूँ, मत्तू मेहता जी का लड़का हूँ, देवचंद्र मेरा नाम है और मैं भी तुम्हारे साथ कच्छ देश में ही चलने वाला हूँ। सिपाही ने पकड़ा और वजीर के पास ले गए। वजीर ने जब देखा कि देवचंद्र, कहने लगे, देवचंद्र तेरा घोड़ा कहाँ है भाई, तेरी सवारी कहाँ है? कहने लगे, जी सवारी कैसी, मेरी तो कोई सवारी नहीं। एकदम देवचंद, आप ही सोचिए, वजीर क्या, सारे जितने भी बराती थे हैरान हो गए कि घोड़े कल शाम के भागते 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 जो राजा के घोड़े थे पानी पानी हो गए हैं और ये एक इंसान आया कैसे? कहने लगे, जी बस जैसे वंग मैंने एक दीवाना, हवा के तरह तुम भी भागते चले आए, मैं भी तुम्हारे कदमों पर कदम रखता आया, ना तुमने सांस लिया ना मैंने सांस लिया, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चला आया, ये नहीं बताया कि मुझे रास्ते में कोई आदमी मिल गया था या ऐसी, बिल्कुल नहीं, वो बातें बताने की नहीं, वो अपनी आत्मा के सुख की बात होती है, वो किसी को कहने की चीजें नहीं होती। इसलिए वजीर भी बड़ा हैरान हो गया कि यारो कहां घोड़े थक गए और ये पैदल आदमी हमारे साथ पहुंच गया। कहने लगा, अच्छा शुक्र है परमात्मा का, कह तू राजी खुशी जंगल बियाबान में से आ गया है, अब तू आराम कर और आज ऐसे करना कि हमारे बावर्ची जो है खाना बनाने वाले भंडारी हमारे साथ हैं, भोजन बनाएंगे, तुम भोजन नहीं बनाना। तो उस समय अभी तारतम नहीं मिला, अभी राज्य भी नहीं मिले, तो ये बात कह दी, क्योंकि छुआछूत उस समय देश में बहुत बड़ी होती थी, साफ कह दिया कि महाराज क्षमा करना, मैं किसी के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करता। कहने लगे, अच्छा किसी के हाथ का भोजन नहीं करते तो राशन जितना भी आपको सामान चाहिए ना रोटी के लिए वो हमारे से ले लेना। गठरी खोली, कहने लगे, देखो मेरे पास घी भी है, खांड भी है, दाल भी है, आटा भी है, मैं को बेचने के लिए छोड़ा गया हूँ, मेरी रोटी के वास्ते सामान मेरे पास है। तब वजीर गुस्से होके कहने लगा, नाराज होके, अरे भाई तू तेरे पिताजी के वो चाचा जी जो थे वो हमारे रिश्तेदार थे, एक ही खानदान था, अब लगा रिश्ता जताने, इसलिए तू घबरा नहीं, जैसे भी है तू आज राशन हमारे से ले। अब देवचंद जी ने कहा, क्या है कि जिद कर ली है, एक मुट्ठी भर दाल, एक आदमी के लिए कितना सामान चाहिए उतना सामान लेकर। अब वो लोग तो सो गए आराम करने लगे, देवचंद जी ईंटे ढूंढ के लाए, कहीं से गोबरी लाए, पानी लाए, लाके चौका लगाया, चौका लगा के ईंटे रख के लकड़ियां ढूंढ के लाए, चूल्हा बनाया। अब सामान जो था उससे खिचड़ी बनाई या रोटी बनाई या जो कुछ भी उनसे बन पाया उस वक्त, घर में कहीं रोटियां तो नहीं बनाते थे, कच्चा पक्का जो कुछ भी उनसे बना, दाल खिचड़ी बना बनो के या जो कुछ भी बना बना के थाली में सजा दिया। अब थाली में सजा करके किसको भोग लगाऊं भाई, दास रूप को दर्शन पायो तो उस पठान को, थाल रख करके उस पठान को बड़े प्यार से रोते रोते आंखों में आंसू भर के कह रहे हैं, ओ मेरे पठान, रख लीजिए ना, कोई और आया है तो रख लो, बड़ा पर ले आओ, ले 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 देवचंद जी ने बनाया था, थाल में रख के रुमाल रख के ऊपर उस पठान का ही ध्यान धरने लगे। दिल में निश्चय ले लिया कि ये पठान के रूप में आए हैं पर मेरे भगवान हैं, मेरे भक्तार हैं, बड़े प्यार से उनको बुला रहे हैं, रो के आंखों में आंसू भर के, कि इतने संकट में मेरे आकर के लाज रखने वाले हो मेरे पठान, तुम आओ, जो कुछ भी मेरा रूखा सूखा बना है, मतलब ध्यान जिसको हम लोग आजकल भोग कहते हैं, ध्यान लगा करके बस फिर वो खा लिया, खा के थोड़ा आराम किया, इतने में सारे बरात वाले भी उठ गए, उन लोगों ने नाश्ता किया। तो जो वो बरात का वजीर था, उस वजीर ने कह दिया, भाई घोड़ों पर तो दूसरा आदमी बैठना मुश्किल है, ऊंट में क्योंकि पलना बड़ा होता है, एक ऊंट में देवचंद जी को भी बिठा लो। देवचंद जी बैठ करके उस ऊंट के पलने में कच्छ में पहुंच गए, और जैसे ही कच्छ में पहुंचे तब वहां वजीर को कह दिया कि वजीर साहब, आप अपनी बरात को लेकर के जहां जाना है जाइए, मुझे यहीं पर उतार दो, मुझे आगे नहीं जाना। वह कच्छ देश में पहुंचकर अब लगे खोज करने, ध्यान के साथ ये चीजें बीतक में क्यों लिखी है। सुंदर साहब समझता है कि शायद ये कथा है, कई कसौटी करी दुल्हन सो कारण हम संयन। ये मूर्ति पूजा जो 4 साल की किस लिए की, किस लिए की? अब हमें क्या बताया जाता है जब हम चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं। सतगुरु श्री धनी देवचंद जी ने 14 साल भी तक सुनी, श्रीमद भागवत का पाठ सुना था, हमको भी श्रीमद भागवत सुननी चाहिए, बिल्कुल ठीक, लेकिन ध्यान के साथ, मेरे पिता बड़े गरीब थे, ध्यान के साथ सुनने वाला प्रसंग है। एक मजदूर थे, मजदूरी करते थे, 2-2 पैसे की बोरी ढोते, एक दृष्टांत तो दे रहा हूं। समय आ गया, उनका समय बदला, धनवान बन गए, और समय बदला, एक देश के राजा बन गए। जब देश के वो राजा बन गए, उनकी शादी हो गई। अब जब शादी हो गई, हमारा जन्म हुआ। तो अब बोलो, लोग हमें मेरे पिता की कहानियां सुनाने लगे, अरे चल ले चल, तेरा पिता जो था वो तो 2-2 पैसे की बोरी ढोया करता था, मजदूर था, ठेली ढोता था। अब ये बताओ, मैं राजा का लड़का होने के बाद क्या मजदूरी करने जाऊंगा? जवाब दो भाई। ठीक है कि हमारे पिता ने मजदूरी की, मेरे पिता ने बोरियां ढोई, मेरे पिता ने संकट सहे, किसके लिए? हर कोई आज हम जो संकट सह रहे हैं किसके लिए? कि हमारी औलाद सुखी हो जाए, हमारी औलाद के लिए अच्छे मकान हो जाएं, हमारी औलाद कारों में घूमे, हमारी औलाद हर काम करे। कि या संकट के समय में मानो मैं पहले कहीं झाड़ू देता था तो मेरा लड़का राजा, मैं राजा बन गया, उसके बाद मेरा लड़का भी झाड़ू देने जाएगा। देवचंद जी ने ये कसमी करी किन के लिए? हम सुंदर साथ के वास्ते, हमें रास्ता बताने के वास्ते, कि इन चीजों में से तुम्हें पार ब्रह्म अक्षातीत की पहचान होनी नहीं, इस रास्तों पे चलना नहीं। क्योंकि उन्होंने चल के इसलिए दिखाया कि ये व्यर्थ की दुनिया है जो इस भ्रमों में पड़ी हुई है, तुम भूल करके भी इन भ्रमों में ना पड़ना, तुम्हें तो कमा करके परम धाम का अखंड ज्ञान तुम्हारे सामने रख दिया है, तुम केवल उनके कदमों पर कदम रखना, उनकी रहनी पर चलना। जिस पार ब्रह्म का ज्ञान देवचंद जी नहीं लाए थे, अब कच्छ देश में जाकर के खोज करते हैं, नहीं तो उनको खोज करने की क्या जरूरत है? जब राजी साथ हैं तो तातों वही नहीं दे सकते थे? नहीं, हम सुंदर साथ के रास्ते, देवियों की पूजा, देवताओं की पूजा, सन्यासियों की पूजा, कनफटों की पूजा, बड़े बड़े पंडितों की पूजा, उनकी लंगोटियां धोई और जाकर के संकट उठाए, कैसे खोज की? अब जरा ध्यान के साथ सुनिए।
अब कहां कच्छ देश की?
अब कच्छ देश में जब देवचंद जी पहुंच गए, जित वहां एक मंदिर में चले गए, सबसे पहले ही इस बीतक में तो इशारा करके लिखा है, लल्लू दास जी की बीतक है, वहां लिखा है कि 84 घड़ियाल वाले मंदिर में पहुंच गए। क्योंकि देवी देवताओं जो हिंदुओं के हैं, 84 धाम 4 अड्डे और 84 धाम आते हैं, 4 धाम 84 अड्डे हैं, यानी देवी देवताओं ने इस भारतवर्ष के अंदर 84 स्थान हैं। जिस जगह पर कोई शंकर का है, कोई किसी देवी का है, किसी देवता का है, 4 धाम है, अमरनाथ बद्रीनाथ इस तरह से 4 धाम है, शारदा धाम इत्यादि, द्वारका जी, और 84 अड्डे हैं। उसके उस मंदिर के अंदर 84 ही घड़ियाल रहते हैं और 84 ही मूर्तियां रहती हैं। जो जिस भगवान की मूर्ति को पूजा करने आता है, पुजारी उठ करके उसको उसी मूर्ति के सामने ले जा करके उसका भोग लेके भोग लगवा देता। देवचंद जी सबसे पहले उसी मंदिर में गए। उस मंदिर में जब गए तो अब क्या देखते हैं कि जो आदमी आता है भोग लेकर के आता है, कोई हनुमान जी को, कोई इंद्र को, कोई रुद्र को, कोई सीता को, कोई राम को, कोई जिस इष्ट को कोई मानता था उसी भगवान की जाकर के पूजा करता है, मत्था टेकता है और पुजारी प्रसाद दे देता और चला जाता है। तब देवचंद जी ने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी महाराज क्या इस मंदिर में कथा नहीं होती, चर्चा नहीं होती, सत्संग नहीं होता? अब सुनिए पुजारी क्या जवाब देता है। पुजारी कहने लगा, अरे भाई चर्चा किस लिए सुनी जाती है? भगवान को पाने के लिए ना। बोल तुम किस भगवान से मिलना चाहते हो? जब सारे भगवान साक्षात यहाँ है तो कथा किसकी तुम सुनना चाहते हो? कथा तो उस भगवान की सुनी जाती है जो भगवान ना हो और जो भगवान की प्राप्ति ना हो। राम भगवान को मिलना है, शंकर जी को मिलना है, महादेव जी को मिलना है, सारग राम जी को मिलना है, रुद्र को मिलना है, इंद्र को मिलना है, लक्ष्मी को मिलना है, जिसको मिलना हो साक्षात दर्शन कराए, ये भगवान ही तो है और कौन है? पर पतीजे ना मन, देवचंद जी के मन को करार नहीं आया, क्योंकि 4 साल तक बराबर मूर्ति की पूजा कर चुके थे और प्रणाम भी स्वीकार नहीं हुआ, इसलिए वहां छोड़ दिया। अब छोड़ करके कहां चले? लोगों से पूछने, भाई मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूं, मैं तो खोज करने के लिए निकला हूं। तो सबने कहा कि भाई अगर ऐसा करना चाहते हो तो सन्यासी बनो। जैसे आज भी लोग कहते हैं, अरे भगवान को मिलना चाहते हो तो त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, घर बार छोड़ना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा। अब सब जो कोई भी कहे यही कहे, सन्यासी बनना पड़ेगा। तब देवचंद जी महाराज सन्यासियों के मठ में चले गए। अब वहां जाकर के देखा कि अग्नि का धुआं चल रहा है, लंगोटी बन रही है, देव फर्स्ट क्लास बॉडी वाले महाराज ऋषि जी वहां पर बैठे। वहां जाके अर्ज विनती की उनके चरणों में कि महाराज मैं भगवान की प्राप्ति के लिए आपकी शरण में आया हूँ। सब लोगों ने कहा है कि सन्यासी जब तक नहीं बनोगे तब तक जो है भगवान मिलेगा नहीं, तो कृपा करके मुझे ज्ञान चर्चा सुनाइए। अब ध्यान देना, सुनने वाली बात है। तो वो क्या कहते हैं कि हमारा कोई दिमाग खराब नहीं है कि हम भां भां करते रहे, पहले हमारे शिष्य बनो, पहले हमारे शिष्य बनो, हमें गुरु धारण करो, हम तब ज्ञान सुनाएंगे। ये नहीं कि तुम कहो जी ज्ञान सुनाओ, हम 4 दिन तुम्हारे भां भां करते रहे और उसके बाद तुम उठ करके चले जाओ, कुछ तुम्हारे नौकर बैठे हैं। दत्तात्रेय ऋषि की कथा सुनाते थे अत्रि अनुसुईया वाले, और तीनों शंकर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे अनुसुईया ने पालने में डाला था, ये दत्तात्रेय की कथा सुनाते थे जिसने 108 गुरु धारण किए थे। और इतने गुरु ऋषियों ने, किसी ने 24 गुरु धारण किए, किसी ने 35 गुरु धारण किए, गुरु धारण ही करते चले गए। इसलिए सबसे पहले वो आकर के इनके चरणों में गिरे। तब उन्होंने कहा, अच्छा महाराज क्या मुझे परमात्मा मिल जाएगा मैं अगर आपका गुरु धारण आपको कर लूं? कह लगे, बिल्कुल निश्चय गारंटी के साथ हम साक्षात भगवत दर्शन कराते हैं, भगवान के साक्षात हम दर्शन कराते हैं, पर शर्त एक है कि पहले हमें गुरु मानो, नाम लो हमारे से, हमारे शिष्य बन जाओ, उसके बाद हम विधिवत आपको मंत्र देंगे, उस मंत्र का उच्चारण करना भगवान तुम्हें जो है वो करें। फिर उनको गुरु धारण किया, क्योंकि कई हमारे सुंदर साथ सोच लेते हैं, लो जी पहले हमने एक गुरु धारण किया अब दूसरा धारण करें। अरे बाबा, ये चीजें दुनिया के गुरुओं ने क्यों बना रखे हैं? केवल अपनी दुकानदारी के लिए नियम कैसे बना दिए कि जो अपना धर्म छोड़ेगा या अपने गुरु को छोड़ेगा वो सीधा नरक में जाएगा। अब दुनिया डर के मारे अपने गुरु को छोड़ती नहीं, चाहे उसको कुछ आता हो चाहे ना आता हो। अब दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु धारण किए, उन्हीं के पास देवचंद जी पहले गए, क्योंकि उन्होंने गारंटी से कह दिया कि हम तुम्हें भगवत दर्शन कराएंगे। जाके गुरु धारण कर लिए, लंगोटी ले ली और मुंडन करवा दिया। अब लगे उनकी सेवा करने, अष्टांग योग प्राणायाम के ये जो है ये सन्यासी लोग ही, सन्यास मत के अंदर ही योग साधना की जो है पहले पूजा होती है, फिर प्राणायाम चढ़ाना सिखाते हैं। देवचंगी दिन भर रात उनको कोई काम कोई और था ही नहीं, बस अपने गुरु की सेवा करना या अष्टांग योग प्राणायाम करना। दे दमन तक भी देवचंगी ने जब कर लिया, दे दमन क्या होता है कि जैसे विधि से जाते हैं ना भाजी, चार बांस गाड़िए जाते हैं, ये महाराज जी ने हमको स्वर्ग आश्रम में जाके दिखाया था, आंखों से देखी हुई बात है। अब भी अगर कभी किसी को हरिद्वार जाने का मौका मिले स्वर्ग आश्रम में जरूर जाना, ऋषिकेश लक्ष्मण झूला पार करके जब आगे चले जाओगे गीता भवन आता है और स्वर्ग आश्रम आता है, उसके अंदर गुफाएं हैं, उन गुफाओं के अंदर आपको ये चीज अब भी देखने को मिल जाएगी कि वो चार बांस गड़े होते हैं उन लोगों ने, जैसे चार थम्बे हो, फिर एक थम्बा उसके बीच में गाड़ देते हैं तो नीचे अग्नि जला के कम से कम डेढ़ दो फुट ऊंचे अंगारे ही अंगारे इतनी अग्नि जला देते हैं। इतने जब अंगारे हो जाते हैं तो टांगे ऊपर बांध लेते हैं, सिर नीचे करके दोनों हाथों बगल ये हाथ बगलों में डाल करके प्राणायाम चढ़ाते हैं। इतना भी करने पर देवचंद जी को ये कुछ शरीर की क्रिया से परमात्मा के दर्शन थोड़े होने थे, जब इतनी क्रिया की इतनी कसरी उन्होंने की और कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई तो उन गुरुओं को छोड़ दिया, पर मंत्र उन्हीं का जाप करते रहे भी जब तक कुछ आगे नहीं मिलता, चलो ऋषियों इनका जो है सन्यासियों का ही जाप करते रहो। उसके बाद किसी ने कह दिया अरे पागल क्यों जीवन नष्ट कर रहा है, अगर तू कुछ पाना चाहता है तो राजा के गुरु के पास चला जा। अब राजा के देवचंद जी ने भी बात दिमाग में फिट आ गई, भाई राजा आखिर इतनी बुद्धि वाला है तभी तो राजा है, तो उसने जिसको गुरु बनाया होगा सोच समझ के तो बनाया होगा, वो तो सर्वशक्तिमान होगा, मैं भी उनके पास चलूं। अब राजा लोग तो उसको गुरु बनाते हैं जिसके पास यंत्र तंत्र और मंत्र होते हैं, क्योंकि राजाओं को तो शक्तियां चाहिए, उनको आत्मा के कल्याण की, आत्मा जाए भाड़ में, उनको तो शक्ति की पूजा चाहिए। अब कनफटे डिम्बकधारी उनके पास गए, जब जाकर के देखा कि कोई आता है किलो बर्फी रख रहा है, कोई आ रहा है फल चढ़ा रहा है, कोई आ रहा है दूध चढ़ा रहा है, बस स्वाय पड़े इंद्रियां बस मन, स्वामी जीवानी में लिखते हैं चौपाई के अंदर कि मैंने वहां देवचंद जी ने वहां के जाके क्या देखा कि साधु संतों को स्वाय दंड फेलना, खाना पीना मस्त होना भगवान के मंत्र का मतलब ही नहीं, ऐसे वो राजा के गुरु थे, उनको भी छोड़ा, बड़े बड़े पंतों के पास भी गए, फिर आखिर सोचा कि मुल्ला के पास भी जाकर के देखे, परमात्मा ढूंढना है, कोई जरूरी तो नहीं कि परमात्मा हिंदुओं का रजिस्टर किया हुआ है, हो सकता है मुसलमानों के पास मस्जिद में जाएं काजी हमको परमात्मा से मिला दे। एक महीने तक जाकर के मुल्ला की सेवा करते रहे। अब मुल्ला क्या करे, आए लोटा उठाए वुजू करे और कान में देखे उंगली, तीन मेहरामों के सामने मस्जिद वो नमाज पढ़े। तब देवचंद जी ने उनसे प्रश्न किया कि भाई ये जो तुम कहते हो कि हिंदू लोग काफर हैं, वो मूर्ति पूजा करते हैं, तुम तो एक दीवार की पूजा करते हो, दीवार के ऊपर तीन मेहरामें बनी हुई हैं, इन मेहरामों का मतलब क्या है, तुम इन मेहरामों का मतलब बता दो फिर मैं खुदा को ढूंढ लूंगा। अब मेहरामों का मतलब कौन बतावे, शायद हमारे प्रणामी सुंदर साथ भी बैठे हुए ना बता सकेंगे, जिन्होंने ध्यान से वाणी सुन रखी है चाचा वो तो भले जानते हैं, ध्यान के साथ सुनिए ये जो तीन मेहरावे हैं ये क्या है। परम धाम का जो मूल दरवाजा है वो दो मंदिर का ऊंचा है, मतलब डबल है, और जो साथ में मंदिर है वो एक छत के, और जो मेन गेट है वो डबल छत पे, यानी आजू बाजू के जो मंदिर हैं कमरे हैं वो डबल छत के हैं। तो जो बड़ा दरवाजा है आप देखते हो राजा महाराजों के, या बड़ी बड़ी जगह पर जाओ तो जो मेन गेट होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिसने ताजमहल देखा होगा ताजमहल का मेन गेट देखो कितना बड़ा ऊंचा है, इसी तरह से राजा महाराजों के महलों के जो मेन गेट होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं। तो पहली मेहराब जो है परमधाम की बड़े दरवाजे की और आजू बाजू की एक एक मेहराब, ये मोहम्मद साहब ने उस चौखट पे जाके सजदा बजाया था, इसीलिए फिर यहाँ आकर के मुसलमानों को कहा कि इस जो है चौखट पे सजदा बजाओ, ये अल्लाह ताला की चौखट है, पर बिन तातम के भेद कौन खोले। अब वो मुल्ला भी कुछ नहीं बता सके, पांच हाँ जी
ये जो मेहराब बनी है
हाँ जी,
छोटी होती है, बड़ी होती है।
हाँ जी, बीच वाली जो होती है फिर नोट करिएगा वो डबल होगी, हाँ, और साइड वाली जो है वो छोटी होती है। ये मूल मिलावे का नहीं, परम धाम का मेन गेट का नक्शा है। हाँ, मूल मिलावा तो बहुत अंदर है, पांचवी हवेली है, ये बाहर का मेन गेट। 100 सीढ़ियां चढ़ के जब हम चबूतरा पार खड़े होंगे, हाँ, जहां से यानी मतलब एंट्रेंस का गेट जो है ये उसका नक्शा है। अब ये मोहम्मद साहब को तो साक्षात दर्शन हुए थे, इसलिए उन्होंने आकर के ये बताया मुसलमानों को कि इस चौखट के ऊपर सजदा बजाओ, ये अल्लाह ताला का दरवाजा है। अब ये भेद कौन खोलेगा? राजी महाराज के बिना कोई भेद खोल नहीं सकता। अब स्वामी जी ने आकर के ये सारे भेद खोले, पर वहां देवचंद जी की तसल्ली नहीं हुई। फिर सोचने लगे, 5 साल हो गए, फिर 6 साल धक्के खाते खाते भोजनगर ही चले चले। पहले भोजनगर क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां पिताजी मंडी में रोज आते थे, कहीं मैं पकड़ ना जाऊं और पिताजी पकड़ के घर न जाओ, घर से भाग करके गए थे, अकेला लड़का था। अब कुंवर भाई माता जी बड़ी व्याकुल हो के रोती है, तो मत्तू मेहता जी उनको रोज झूठ क्या बोल देते हैं कि घबरा नहीं, लड़के को हमने भोजनगर में गुरु जी के आश्रम में डाल रखा है, पढ़ रहा है, जब पढ़ लेगा तब घर आ जाएगा। माँ का अकेला लड़का है, दिल में चोट न लगी। अब जब पहुंच गए भोजनगर तो सीधा हरदास जी के पास चले गए, जो उनके पिताजी के गुरु थे। अब वहां भी रहे तो उनकी सचवटी, रियलिटी, हकीकत, सच्ची लगन को देखा। पहले देवचंद जी यूं परखते थे, क्या देखा? अब सारे कच्छ के मंदिरों को देखा था, तो वहां क्या देखा कि पुजारी जी महाराज क्या करते, अगर तो कोई सेठ आ गया, चाहे वो उसने पैर भी नहीं धोए, हाथ भी नहीं धोए, लेकिन हाथ में लिफाफा ला रहा, तो पुजारी जी पहले ही उठ के तैयार हो गए। आइए सेठ जी महाराज, आओ आओ महाराज, नमस्कार प्रणाम, आइए आइए आइए, बैठिए। पहले ही लिफाफा लिया, एक लड्डू भगवान के मुख में लगा दिया, बाकी आधा अपना डाला और आधा उसको दे दिया। अब वो कोई गरीब बेचारा अगर बगैर भोग के ही मंदिर में आ रहा है, कैसे मुंह चले उठाए चले आ रहे हो? पहले जा हाथ पांव धो, वहां नल किसने बना रखा है, वहां से हाथ धो, पांव धो, फिर मंदिर में आओ, बगैर कहे चले आते हो। ये चीज देवचंद जी को खा गई थी कि इन पुजारियों ने भगवान को केवल पैसे वालों का बना रखा, कि अगर कोई पैसे वाला आ जाए, भोग लेके आ जाए, तो उनका तो स्वागत करें, प्यार से बोले, और कोई बेचारा गरीब आ जाए तो इतना फटकारते ही। लेकिन ये चीज हरदास जी के अंदर नहीं थी, उनके अंदर इतनी सचवटी, सच्ची हकीकत, एक तो सेवा पूजा की थी कि जितनी बार भी निज मंदिर में सेवा के लिए जाते थे, सुबह दोपहर और रात्रि को स्नान किए बिना नहीं जाते थे, 3 वक्त स्नान करते थे। क्यों? क्योंकि राधा वल्लभी मार्ग के अंदर आज भी कर्मकांड बराबर है, जिसको वैष्णव मत कहते हैं, वो बगैर नहाए धोए पुजारी किसी कीमत में भी मंदिर में नहीं जा सकेगा, क्योंकि छुआछूत उनके यहाँ और पाठ पूजा क्या और नहाना धोना ये चीज बहुत ज्यादा आज भी है। उस समय भी ये चीज देवचंद जी ने देखी कि वाकई इनके दिल में भगवान की पूजा के प्रति एक ये चीज, दूसरी वो सखी भाव से पूजा करते थे कि जब मंदिर में निज मंदिर में जाना तो साड़ी पहन लेते थे, कमर में साड़ी का पल्ला बांध के और बाकी का सिर के ऊपर दौड़ करके एक सखी भाव लेकर के तब अंदर श्री कृष्ण कन्हैया जी के। उस मंदिर में 2 मूर्तियां थी, एक बाल मुकंद की और एक बांके बिहारी जी की मूर्ति थी, और ये सखी भाव होकर के कि मैं एक गोपी हूं, ये मेरे स्वामी है, ये भाव लेकर के हरदास जी महाराज उस मंदिर में सेवा करते थे। एक चीज तो ये इंप्रेशन, एक सबके साथ समदर्शी, एक जैसा व्यवहार रखना, ये चीज, और तीसरी, जो कोई भी भले एक जने ने भी आके कोई प्रश्न पूछा ज्ञान का, तो उसको बैठ करके बड़े प्यार से समझाते थे। ये चीज देख करके देवचंद जी के दिल में क्या चोट लगी कि इनके पास कुछ ना कुछ है, तभी इनका दिल इतना नरम है, तभी इनका दिल इतना कोमल है, तभी ये सबके ऊपर दया करते हैं, तभी ये सब के लिए कुछ करते हैं, कोई ना कोई शक्ति परमात्मा की है। अब इनसे लेना है तो मांगने पर कौन दे देगा? मैं इनकी सेवा करूं, सेवा करके मैं रिझा लूंगा, जब ये मेरी सेवा पर मुग्ध हो जाएंगे तो बिन मांगे ही मुझे ये सब कुछ दे देंगे। एक दिन क्या हो गया, अब रात को देवचंद जी क्या करते हैं, 12 बजे उठ जाते हैं। जब घर वाले सो जाते हैं तो वो उठ करके जूठे बर्तन मलते हैं। हमें तो आज जरा सा कोई दो शब्द कह दे, अरे बस बस हमारा तुम्हारा नहीं निपटता। गुरु कृपा इतनी चीज होती है कि जो यदि हम नारद पंचांग में देखें, प्रसंग आ गया बताना तो जरूर पड़ेगा। नारद को सदा अभिमान ये रहता था कि संसार में आना, जो भगवान ने हुक्म करना काम करके चले जाना। एक बार 84,000 ऋषियों की वशिष्ठ जी ने सभा ली, उस सभा के अंदर नारद जी भी पहुंच गए। अब वशिष्ठ को यह पता था कि नारद जी ने आज दिन तक किसी को भी गुरु धारण किया नहीं, इसलिए कह दिया भाई जिसने गुरु धारण नहीं किया वो ऋषियों की सभा में से उठ जाओ। ये जो प्रसंग मैं आपको बता रहा हूं ये नारद पंचांग के अंदर लिखा हुआ। अब ऋषि नारद जी को खड़ा होना पड़ा, नारद को बाहर निकाल दिया सभा में से, और ये भी कह दिया वशिष्ठ जी ने कि जिस जगह नारद बैठा हुआ था इस जगह की 2 फुट धरती, 2 गज धरती नीचे मट्टी उठा करके भी बाहर फेंक दो, क्योंकि गुरुआ जिसने गुरु धारण नहीं किया धरती पर जहां जहां पर कदम रखता फिरेगा वो धरती दूषित हो जाती है। इसलिए नारद के सामने वो मट्टी भी उठवा के जब बाहर फेंकवा दी तो बड़ी ग्रेट इंसल्ट थी, बहुत बड़ा भारी अपमान था। अब ये बात दिल में लेकर के नारद जी महाराज सीधा विष्णु भगवान के पास वैकुंठ में गए और जाकर के बड़े दुखी हुए। कहने लगे भगवान मैं आपका ही तो हुक्म बजाने के लिए जाता हूं, इतनी मेरी बेइज्जती करानी थी, मुझे आप कह देते कि उस 14 लोक के अंदर गुरु धारण करना जरूरी होता है तो मैं गुरु धारण कर लेता, आज मेरा इतना अपमान 84,000 ऋषियों के अंदर आपने करवा दिया। तो विष्णु भगवान कहने लगे भी मेरा क्या कसूर है, जब तू रोज 14 लोक के अंदर जाता है और तू देखता है कि हर आदमी गुरु धारण करता है तो तुमने क्यों नहीं गुरु धारण किया। कह लगे महाराज मैं किसको गुरु धारण करता, मुझे तुम ही बता दो मैं किसको गुरु जरा के धारण करूं। कह लगे अच्छा सुन, कल चला जा मृत लोक में, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आदमी तुझे मिल जाए वह उसी को गुरु धारण कर ले। कह लगे अच्छा महाराज मैं जाता हूं। अब नारद जी महाराज आए, सृष्टि पर उतरे, जहां दुनिया ही दुनिया बस रही थी और नारद सुबह से लेके शाम तक जो लगा घूमने, गर्मी का मौसम बेचारा घूम 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 तक के पांव में छाले हो गए, पर कोई आदमी ना मिले। तो विष्णु भगवान लीला कर रहे थे ना सारा उसका अहंकार तोड़ने के लिए, अब कोई आदमी मिले ही नहीं। आखिर में क्या हुआ, एक तालाब नजर आया और वहां पे एक आदमी नजर आया, पर वहां क्या देखा कि वो कौन है, मछियारा मछियां पकड़ने वाला है। तो नारद दूर से कहते ले फूटी किस्मत, कोई दुनिया पूछेगी अरे नारद तूने किसको गुरु धारण किया तो मैं क्या बताऊंगा कि मछियां पकड़ने वाला मछियारा मेरा गुरु है, और भी सत्यानाश हो गया, इससे तो नहीं धारण किया था तो अच्छा था। मतलब गुरु के प्रति ऐसे भाव दिल में ले आए कि मेरा गुरु मछियारा है, अब मैं क्या इससे गुरु मंत्र लू, पर ठीक है भगवान ने कहा है मेरी जब किस्मत ही फूटी है इसी से लेता हूं, चल भाई। अब आगे गया तो विष्णु स्वयं विष्णु भगवान ही तो मछियारे बन के बैठे हुए थे, क्या किया कि वो मछियों का जाल जो है ना, कभी आपको मौका ना ही मिले तो अच्छा है, मिले तो सूंघना, इतना गंदा बदबूदार होता है वो कि उसको आदमी सूंघ नहीं सकता, जानबूझ करके हवा वो जाल जहां सूख रहे थे उस तरफ से हवा नारद की तरफ को चला दी। अब नारद को दूर से ही वो गंदे जालों की जो आई बदबू, नाक को घूंटता घाटता दबाता दबूता, वह जैसे मुसीबत का मारा कोई आता है आकर के चरणों में गिरा। कहने लगे महाराज, अब वो मछियारा कहने लगा नारद ऋषि मैं तो वैसे ही पापी हूं, है वो विष्णु भगवान लेकिन मछियारा बन के कह रहे हैं मैं तो वैसे ही पापी आदमी हूं, हम गरीब आदमियों को आप ऋषि जी मजाक करने आए हो, मैं मछलियां पकड़ने वाला, आप मेरे चरणों में पड़ रहे हो, कुछ तो कृपा करो, मेरे ऊपर से कोई मेरे से गलती हो गई है क्षमा कर दो महाराज। उनके चरण छूने लगे, कहने लगे नहीं मैंने आपको गुरु धारण कर दिया। अब वो सुन करके मछियारा और घबरा गया कि मुझे गुरु धारण करोगे, तो क्या करोगे? मछलियां पकड़ोगे, मारोगे, खाओगे, क्या करोगे? गुरु धारण करना है तो किसी योग्य व्यक्ति को करो। कहने लगे कुछ भी है बस मैंने गुरु धारण करना, भाव तो दिल में है नहीं पर गुरु धारण करना है। उसने कहा अच्छा जा, अगर तूने गुरु ही धारण करना है, शरण में आ गया है तो मेरा आशीर्वाद है, कभी संकट पड़े तो याद कर लेना। जा अब कर लिया गुरु धारण, गए नारद जी महाराज पर दिल मुरझाया हुआ, मैं विष्णु भगवान जो मेरे से अब पूछेगा मैं किसको गुरु धारण किया, तो मैं क्या भगवान को बताऊंगा कि एक मछलियां पकड़ने वाले को गुरु धारण किया, मेरी तो बस हत्या ही नाश हो गया, किस्मत ही खराब हो गई। करते कराते वैकुंठ में पहुंचे, विष्णु भगवान सुबह सुबह चौकी पर बैठे अपना दातुन कुल्ला कर रहे थे, तो नारद जी महाराज पहुंचे, चरणों में किया प्रणाम। विष्णु ने पूछा क्यों भाई नारद, आज तो बड़े खुश नजर आते हो। कहने लगे भगवान क्या खुश नजर आना, किस्मत फूटी थी बस हमारी तो। क्यों क्या बात हो गई? कहने लगे गुरु धारण कर लिया। कहने लगे जी गुरु तो धारण कर लिया पर शब्द लगाया, कोई अपमान वाला शब्द नहीं कहा, पर ही लगाया। उसी वक्त विष्णु भगवान कहते हैं जा नारद, तूने अपने गुरु के लिए पर लगाया है, जा 84 लाख योनि भगत, उसके बाद तुझे वैकुंठ में आने की इजाजत होगी। जब तक 84 लाख योनि का तू जीव बन करके सड़े